قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا چکے مومن، کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع ایک خشوع ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، خضوع جھک جانا، ٹھیک ہے، اپنے اعضاء کو اللہ کے آگے جھکا لینا، اور ایک خشوع ہے. خضوع کو کیوں نہیں یہاں پہ کہا گیا؟ اس لیے کہ مومن سے تو تصور ہی نہیں کیا جاتا جا سکتا جو مومن ہوگا کہ وہ اللہ کے آگے جھک کے نہ کھڑا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خضوع تو لازمی ہوگا ہی ہوگا مومن، ٹھیک ہے. توجہ کرائی گئی خشوع پہ، اس لیے کہ خشوع میں کمی آ جاتی ہے، انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوں. خشوع کیا چیز ہوتی ہے؟ خشوع ہے دل کا جھک جانا، دل کا فوکسڈ ہو جانا، دل متوجہ ہو جائے، دل جس کو کہتے ہیں نا دل لگا کے کام کرو. آپ کسی کو کہتے ہیں نا ایک کام ایسے ہی مارے باندھے کا کر، کیا کہتے ہیں؟ دل لگا کے کام کیا کرو. آپ کو نظر آ جاتا ہے جب کسی نے دل لگا کے کام کیا ہوتا ہے، جب کسی نے ایسے کیا ہوتا، فرق پتہ چلتا ہے نا. اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم نمازوں کو دل لگا کے پڑھیں، کہ جب آدمی کھڑا ہو نا دل میں احساس ہو کہ میں کس ہستی کے آگے کھڑا ہوں، وہ رب العالمین جو کائنات کا مالک ہے اس کے آگے میں کھڑا ہوں. اور اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ ہم بعض دفعہ سوچتے نا آئے ہم تو خشوع حاصل کر ہی نہیں سکتے، ہماری تو نمازوں میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ خشوع آئے گا. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس کے الفاظ کے اوپر فوکس کریں، جو الفاظ آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں دھیان لگا کے ان کو نکالیں زبان سے. الحمدللہ رب العالمین تو پتا ہونا چاہیے کیا کیا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے. اور جب میں یہ کہہ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہا ہے، سورہ فاتحہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، تو جواب کا انتظار بھی ہے کہ سیدھے یہ اس طرح سے پڑھ رہی ہوں. سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے، دھیان لگا کے پڑھنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ کہ فوکس ہو کے بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف فوکس، یعنی کسی اور طرف دھیان نہ جائے، کوئی اور خیال نہ آئے. تو اب انسان کہتا ہے کیسے نہ آئے، مجھے تو خیالات آ جاتے ہیں. تو خیالات دیکھیں دو طرح کے ہیں نا، ایک تو وہ خیال ہے کہ انسان ارادی طور پہ لے کر آتا ہے، جو ہی نماز شروع کی سوچنا شروع کر دیا ابھی یہاں جانا ہے، ابھی وہاں جانا ہے، ابھی یہ پکانا ہے، اچھا یہ پہننا ہے، اچھا اتنی دیر میں وہاں پہنچیں گے، اچھا ابھی تو یہ ٹائم ہو گیا، اچھا جانے کا تو ٹائم ہونے والا ہے، جلدی جلدی کرو کچھ، ایک یہ. یا پورا دن سوچنے لگے، یا بچے کو لینے جانا ہے، یا بچوں کی کوئی بات سوچنے لگے، یا کوئی قریب بیٹھا ہوا فون پہ بات کر رہا ہے یا کسی سے بات کر رہا ہے ان کی طرف دھیان لگایا ہوا، کیا باتیں کر رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ آپ خود خیالات لا رہے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے الگ ہو کے نماز پڑھیے. اور پھر جو خیالات ایک غیر ارادی طور پہ آ جاتے ہیں، انسان کا ارادہ نہیں ہے پر کوئی خیال آ گیا، ہر وقت ہمارا ذہن تو چلتا رہتا ہے نا، تو خیال کوئی آیا، اب خیال تو آ گیا ہے لیکن اس کو انٹرٹین ہم نے نہیں کرنا، ہم نے اس خیال کے آتے ہی اپنے آپ کو واپس لے کے آنا ہے کہ میں نماز میں کھڑی ہوں، اگر بھول گیا تو پھر واپس آ جائے، یہ نہ ہو کہ پوری نماز گزر جائے اور سلام پھیرا اور پھر سوچا او ہو میں تو نماز پڑھ رہی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ خیالوں کے اندر ہی ساری نماز ختم بھی ہو گئی. اس لیے کہ نماز ہم جب پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کس پوزیشن میں جا رہے ہیں، وہ ایک ایکسرسائز کی طرح لاشعوری طور پہ ہی ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ایک سے دوسری سٹیج پہ گئے ہیں، رکوع سے سجدے میں، سجدے سے آگے اٹھ گئے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے جب ایسے خیالات آئیں اور اگر بار بار آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں فوکس نہیں کر پا رہی، تو لیفٹ سائڈ پہ دھتکار دیں ایسے ایسے، جس میں تھوڑا سا پھونک بھی ہو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، ٹھیک ہے. दूसरे ये कि इंसान जब अल्लाह ताला के आगे खड़ा हो तो खड़े होने से पहले, ये पहले की बात है, खड़े होने से पहले जब आपने वुजू किया उस वक्त ही पहले सोचें। हम ना एक्चुअली हाजिर दिमागी से काम नहीं करते। इस वक्त ये दुनिया का प्रॉब्लम हो गया है बहुत बड़ा है इंसानों का, कि वो जिस जगह पे हैं वो वहां नहीं होते, वो कहीं और होते। सिर्फ नमाज में नहीं है, हर चीज में। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कहीं आप खाना पका रहे हैं, सोचो में कुछ और है। खाना पककर पका रहे हैं, कुछ पता ही नहीं क्या डाला क्या फेंका। ड्राइविंग कर रहे हैं, सोच कहीं और है। वहीं चलते जा रहे हैं जिधर रोज जाते हैं। आज तो मैंने कहीं और जाना था, लेफ्ट मुड़ना था, लेकिन जो कि रोज राइट जाती हूँ तो गाड़ी चलाते चलाते वहां कहीं और ही पहुंच गई। अब क्लास में बैठे फोकस ही नहीं, कहीं और ही ख्यालों में पहुंचे हुए। तो कहीं पे भी नहीं हमारा फोकस रहता। अब तक ये बात जब हमसे कोई बात कर रहा होता है ना, और हम कहीं और होते। जहां पे उस वक्त हैं वहां नहीं होते, जो काम कर रहे हैं उसमें नहीं हमारा ध्यान होता। तो लिहाजा नमाज के अंदर भी ये मसला है। और इससे पहले अगर आप वुजू के वक्त हाजिर दिमागी शुरू कर दें, फोकस, अभी मैं यहां हूं, मैं जो कर रही हूं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, फैशन में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, खाने को आज क्या पकाना है, क्या करना है, इसके बाद सारी चीजें साइड पे, मैं वुजू कर रही हूँ। इसीलिए ये जो नमाज में खड़े होके बाद लोग मुंह से बोल के नियत करते हैं ना, दो रकात नमाज, फर्ज, मुंह किबला शरीफ, फजर की मैं पढ़ी, पता नहीं क्या इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, ये तो अल्फाज सुन्नत से है ही नहीं, ये तो सुन्नत में है ही नहीं। अगर शायद किसी ने भलाई के लिए, कि लोगों का फोकस नहीं होता तो उनको ध्यान कराने के लिए कह दिया आप ये करा करें, अब वो भी ऐसी रूटीन बन गई कि वो भी जुबान से ऐसे निकल गए, मुंह तरफ काबे शरीफ है, अल्लाह अकबर, और बस उसके बाद, कि वो भी एक रूटीन ही बन गए। जो चीजें रूटीन बन जाती हैं फिर फोकस उनमें खत्म हो जाता है। तो अब आप देखें कि वुजू करते वक्त भी हमने मुंह से नहीं बोल के कहना, लेकिन प्लीज अपने दिमाग में सोचें, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, मैं अल्लाह के आगे खड़ी होने जा रही हूँ, और उसके साथ वुजू करें, इस बात को सोच के। जब वहां से फोकस शुरू होगा और आप सारे ख्यालात को एक तरफ करेंगे, तो फिर नमाज में भी आके खड़े होंगे तो कुछ सुकून। अगर वुजू में भी बातें भी हो रही हैं, इधर भी हो रहा है, हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सोच भी कुछ और रहे हैं, वुजू में इत्मीनान नहीं, वुजू ही ढंग से नहीं, तो आप आगे आएंगे तो आगे भी कहां ध्यान लगेगा। तो उसकी प्रेपरेशन, नमाज चलो 5 मिनट की आपकी, लेकिन उसकी जो प्रेपरेशन है ना, तो वो भी तो एक करनी है। उसमें ही फोकस होगा तो वो आगे फोकस चलेगा, ठीक है। और ये खुशू कोई ऐसी चीज नहीं, हमने स्विच ऑन कर दिया, हमारा खुशू शुरू हो गया जी, अल्लाह अकबर करा, चलो जी स्विच ऑन। ये ना, ये इसकी हमें ना कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करनी होगी, आदत डालनी होगी कि मैंने जानमाज पे खड़े होना, मैंने अपने जहन को फोकस करना है, मैंने कोई बात नहीं सोचनी, थोड़ी देर खड़े रहे अल्लाह अकबर कहने से पहले और सोचे मैं अल्लाह ताला के आगे खड़ी हुई हूँ, मैंने फोकस करना है, मैंने फोकस करना है। खुशबू वाले जन्नत में जाएंगे, मैंने खुशबू लेकर आना है अपनी नमाज, मैंने अच्छी वाली नमाज पढ़नी, मैंने ध्यान से नमाज पढ़नी, फिर शुरू करें, थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है, उससे फर्क पड़ेगा। मैं आपको कोई गोली तो दे नहीं सकती कि आप ये वाली गोलियां खा ले उससे खुशबू आ जाए करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, इसकी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा खुशबू का माना क्या है? सुकून, इत्मीनान, कि मतलब सुकून के साथ आप नमाज पढ़े। और सुकून के अंदर ये भी है कि बहुत ज्यादा आप तेजी से ना पढ़े कि एक बस रुकू में गए फिर उठ गए, सजदे में गए उठ गए फिर बैठे फिर उठ गए फिर, मतलब इतनी तेजी में पढ़े, ये सुकून नहीं है, ठीक है। सुकून है इत्मीनान, हर एक रुकन पे जाके रुके, रुकू में गए हैं तो रुके वहां पे, थोड़ी देर रुक तो जाएं, अभी गए नहीं है तो पहले ही उठ गए, अभी सजदे में गए नहीं है तो पहले ही सर उठा दी, ये नहीं है। देखिए, एक तबरानी की हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला उन नमाजों की तरफ नजर भी नहीं करता जो ऐसे पढ़ी जाती हैं कि जिनके अंदर रुकू यानी पुष्ट सीधी नाव, रुकू और सज्दे में पुष्ट सीधी नाव, यानी रुकू और सज्दे में कैसे पुष्ट सीधी होती है, यानी आप रुकू में गए हैं आपकी पुष्ट सीधी तभी होगी ना, थोड़ी देर वहां पे वेट तो करें तभी पुष्ट सीधी होगी, और सज्दे में भी अगर ऐसे गए और ऐसे उठ गए तो फिर कैसे। ठीक है, तो ये तबरानी की हदीस है कि अल्लाह ताला ने देखेगा भी नहीं, तो फिर नमाज की कबूलियत का क्या सवाल है। और देखें जब इंसान अल्लाह अकबर कहता है ना, तो हदीस में आता है अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है, अल्लाह ताला मुतवज्जे हो जाता है, रब्बे कायनात उसकी तरफ फोकस कर रहा है, उसको देख रहा है। सोचिए मैं अल्लाह की नजरों में हूँ इस वक्त, अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, कैमरा आपको देख रहा हो, कैमरे पे आज पता चले जी आज हमारी नमाजों की रिकॉर्डिंग होनी है, ये सोचिए थोड़ी देर के लिए कि आज हमारी इन नमाजों की रिकॉर्डिंग होनी है, सोचिए कैसी नमाज हम पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है, अब ये ना वो दिखाएंगे भी टीवी पे भी दिखाएंगे हमारी नमाज, अंदाजा करें हमारी नमाज कैसी होगी, ऐसी ही होगी जैसी अभी पढ़ते हैं। तो अगर कैमरे का इतना एहसास है तो अल्लाह ताला की नजरों का कितना होना चाहिए, और फिर अल्लाह ताला उससे नजरें फेर लेते हैं जब इंसान दूसरे ख्यालात में मगन हो जाता है। जब तक आपका फोकस अपनी नमाज की तरफ रहेगा अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जे रहेगा, और जब फोकस अल्लाह की तरफ से हटके नमाज की तरफ से हटके अपने ख्यालों में होगा अल्लाह ताला भी उससे तवज्जो हटा लेगा। कितनी वो है ना महरूमी की अल्लाह ताला अपनी नजरें हटा ले। तो पता है जो बुरी तरह से नमाज पढ़ी जाती है वो इंसान के मुंह पे दे मारी जाती है, साहब अपना चेहरा छुपा लिया करते थे कि हमारी नमाजें हमारे मुंह पे ना दे मारी जाए। और मैं सोचती हूँ अल्लाह पता नहीं, मैं तो अपना सोचती हूँ आपका नहीं, मैं कहती पता नहीं पूरी जिंदगी में भी कोई ऐसी नमाज है जो इस काबिल है कि जो कबूल हो। अल्लाह ताला तेरे शान के लायक तो कोई नमाज भी नहीं पढ़ी। और खुशू में उलमा ये कहते हैं ये भी है कि इंसान नमाज में बहुत हरकतें ना करे, कभी यहां से दुपट्टा सीधा कर रहे हैं, कभी वहां से कर रहे हैं, कभी बच्चों को इशारे कर रहे हैं, कभी उसको मना कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कनखियों से इधर देख रहे हैं कभी उसकी तरफ देख रहे हैं, कभी वो आ रहा है उधर देख रहे हैं। मस्जिदों में अक्सर देखा गया लोग खड़े हुए नमाज में इधर उधर देख रहे हैं, उनकी नजरें चारों तरफ घूम रही कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये तो खुशू नहीं है। तो कम से कम हरकत हो, कभी बहुत ही जरूरत है तो फिर, वरना नमाज में हरकत करना जायज नहीं। इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं जिसने तीन दफा हरकत की है उसकी नमाज ही मकरूह हो गई, बाज़ उलमा कहते हैं। वो कहते हैं कम से कम हरकत, यानी आप तो बहुत ही ज्यादा कुछ जरूरत है तो फिर आपने हरकत की। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा रो रहा है, अब वो पास पड़ा हुआ है, अब आपने सारी जमात का जो है ना नमाज को खराब किया हुआ है, मस्जिद में सब में उसके रोने की आवाज है, आप मजा ले के बच्चे को उठा ले तो बच्चे उठा ले उस वक्त, कोई हरज नहीं है इसके अंदर, वो नहीं उठाना वैसे सारा बच्चा है दुपट्टा से सीधा करते रहे। इसी तरह बाज लोगों के सेल फोन इतना रिंग करते हैं, अब सबकी नमाज खराब हो रही है पूरी मस्जिद में, उनकी फोन की एक तो पता नहीं क्या क्या रिंग टोन्स लगा लेते हैं, वो बज रही है। भैया आप उसको बंद कर दे जिससे आपकी नमाज पे इफेक्ट हो रहा है, क्या फोकस उस बंदे का होगा और बाकी नमाजियों की भी नमाज खराब हुई, इस बंदे का क्या फोकस होगा जिसका फोन बार बार रिंग कर रहा है। और फिर सामने अगर फोन रख ले माशाल्लाह सज्दे की जगह पे ताकि जो कॉल्स आए या टेक्स्ट आए तो उनका भी ध्यान रहे ना, चाहे रिंग ऑफ भी कर दी उस पे भी ध्यान रहना चाहिए, तो ये क्या खुशी हुआ बताएं, ये तो मजाक है। फिर एक और चीज खुशू में ये आती है कि सुन्नत के मुताबिक नमाज को पढ़ा जाए, और सुन्नत कैसी है देखें तो सही कि सुन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे, कैसे इत्मीनान था, रुकू कैसे करते थे, सज्दा कैसे करते थे, तस्बीहात क्या पढ़ते थे, किस तरह बैठते थे, कैसे करते थे। इसीलिए उलमा कहते ना तीन दफा कम अज कम तस्बीहात रुकू और सज्दे की करें, ताकि तीन दफा कम अज कम पढ़नी होंगी तो एटलीस्ट इत्मीनान से तो जाएंगे ना, लेकिन हमारी वो तीन दफा भी ऐसे होती कि पता नहीं वो एक सेकंड में ही खत्म हो जाती। फिर खुशबू में ये भी आता है कि नजरें फोकस्ड हो, नजरें इधर उधर ना जाए ना, तो नजरें आपकी कहाँ होनी चाहिए, सद्दे के मुकाम पे जमी रहनी चाहिए, जमी। अभी पिछले दिनों किसी ने कहा जी मुझे पता नहीं वो किसने बता दिया ये बात, शायद और भी लोगों को ये गलत फहमी हो कि जब हम रुकू में जाते हैं तो हमें अपने पैरों की तरफ देखना चाहिए क्योंकि यहां से सबसे पहले जान निकलनी है। कहीं पता नहीं कहाँ से फलसफा लिया है, अल्लाह बेहतर जानता है। हालांकि आप रुकू में भी गए हैं तो आपकी नजरें सज्दे की जगह पे, ये नहीं कि अपने पैरों पे देख रहे हैं नेल पॉलिश लगी है कि नहीं, पाजेब ठीक है कि नहीं, हाँ मेरे पैर कैसे हो रहे हैं आज। अब तो पैरों को ही देखते रहेंगे फिर तो पैरों में ही गुम हो जाएंगे। तो इवन ऐसा जानमाज भी ना इस्तेमाल करें कि अगर आप उस जानमाज की वजह से आपका फोकस खराब हो और उसमें इतने इस तरह के नक्शों निगार हैं कि आप उन्हीं को देख के कि कैसी डिजाइनिंग हुई हुई है, कैसी कढ़ाई हुई हुई है, ठीक है। तो खुशू हासिल करने के लिए इंसान अपनी पूरी एफर्ट करे। अब जो चीज भी इस चीज को खराब करती है उस चीज को हटा दे। अब वो पता है हदीस में आता है सबसे पहली चीज जो इस उम्मत से उठ जाएगी वो खुशबू है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहां तक कि पूरी कौम में कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जो खुशबू करने वाला हो। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ हमें कर दे। ऐसे लगता है कि वो जमाना आ गया कि वाकई पूरी पूरी मस्जिद में नमाजें हो रही हैं लेकिन खुशबू ही नहीं। और जब खुशबू तभी आता है ना जब किसी का रोब हमारे अंदर हो तो हमारे अंदर खुद ब खुद खुशबू आ जाए, खुद ब खुद नजरें भी झुकेंगी, खुद ब खुद आजी भी आएगी, खुद ब खुद इत्मीनान भी आ जाएगा, खुद ब खुद अंदर की कैफियत भी बदल जाएगी, बाहर की भी बदल जाएगी। अंदर की बदलेगी तो बाहर की बदलेगी ना, अंदर एहसास होगा मैं किसके आगे खड़ी है तो बाहर की खुद ब खुद बदल जाएगी। इत्मीनान इस तरह का होना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि इतने सेकंड यहाँ पे रुकना है, इतने सेकंड है, वो कैलकुलेशन आपको बता दीजिए, आप सेकंड गिनते रहे, नहीं। इत्मीनान ऐसा कि बस जो मैं अल्लाह तआला से कहना चाहती थी कह दिया, जो मैं बोलना चाहती थी मैंने बोल दिया। जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा ये कहें तो वाकई ये एहसास हो के सुन लिया अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने मेरी। तो तर्जुमा भी तो आना चाहिए ना इसका मतलब नमाज का। अगर तर्जुमा नहीं आता तो फिर कैसे खुशबू आएगा, किस में दिल लगाएंगे। और फिर एक चीज जो इंसान को हेल्प करती है वो ये कि बदल बदल के सूरतें भी पढ़ा करें। हमेशा सूरह इखलास ही पढ़ लेंगे तो फिर भी नहीं आता खुशबू। सूरह फातिहा तो हमेशा ही पढ़नी है लेकिन दुआ इस्तफ्ताह भी आप बदल बदल के पढ़ सकते हैं, सूरतें भी बदल बदल के पढ़ सकते हैं, रुकू की तस्बीहात भी बदल बदल के, सज्दे की भी बदल बदल के। फिर तशहुद के अंदर आप बताइए आप तो पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे आप, फिर उसके बाद जितनी दुआएं हैं तरह तरह की दुआएं आप याद कर लें, मसनून दुआएं, कुरानी दुआएं, वो सारी पढ़ा करें, ठीक है। जब तक आप रोबोट की तरह नमाज पढ़ेंगे तो खुशू नहीं आ सकेगा। और जब आप सोच के, जाहिर है इसमें सोचना पड़ेगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, जब भी कोई नई सूरत पढ़ेंगे तो इसीलिए आप जो हिफ्ज करें उसको नमाज में शामिल करें, सोच समझ के, जाहिर है फिर कितना आपको फोकस करना पड़ेगा। और देखिए ये जो कनेक्शन है ना अल्लाह ताला के साथ जुड़ना, ये जरूरी है नमाज। क्योंकि मुनाफिकीन के बारे में कुराने पाक में आया कि अदा कामू इला सलाती कामू कुसाला, तो जब नमाज के लिए खड़े होते तो इसका मतलब खड़े वो भी होते थे लेकिन कैसे खड़े होते थे, सुस्ती के साथ। सुस्ती मन कसाला की कैसी कैफियत होती, समझने कनेक्शन नहीं बना, राबता ही नहीं जुड़ा। नमाज भी पढ़ ली पूरी की पूरी, नमाज खत्म हो गई लेकिन कनेक्शन कहीं पे भी नहीं जुड़ पाया, सज्दे तक में नहीं जुड़ पाया। हालांकि सज्दे में इंसान अल्लाह ताला के सबसे करीब होता है, समझ ले कि बंदे ने अपना सर अल्लाह ताला के कदमों में रखा होता है, इतनी करीब होता है फिर भी नहीं कनेक्शन जुड़ा। तो कनेक्शन जुड़ना जरूरी है और इतनी बड़ी फखरिया बात नहीं है कि हम कहें हम नमाज पढ़ते हैं जी, क्योंकि याद रखिए मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे। और अगर कोई नमाज ही नहीं पढ़ता, अल्लाह माफ करे, तो फिर तो सोच लें कि फिर मुनाफिकीन भी नमाज पढ़ते थे, वो फिर किस कैटेगरी में आया, उससे भी नीचे चला गया। तो नमाज तो बेस लाइन है, बेस, इससे ऊपर आगे चीजें शुरू होती हैं। तो नमाज पढ़ के ही फखर ना करें, खुशू लेकर आए। आपसे सलम ने फरमाया नमाजी अल्लाह ताला से सरगोशियां करता है, और सरगोशी हमेशा करीब से की जाती है, दूर बैठ के तो नहीं ना होती। तो सोचे आप अल्लाह ताला के कितने करीब होते हैं नमाज। अल्लाह अकबर। तो खुशू, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि खुशू कैसे हासिल करना है, कैसे पाना है, इसके लिए मुझे कैसे मेहनत करनी है, और इसके लिए कैसे मुझे सोच समझ के, अगर नमाज का तर्जुमा नहीं आता उसको भी मैं समझूं, उसको भी मैं याद करूं या उसके ऊपर ध्यान करूं, ठीक है। अल्लाह ताला की अजमत का, उसके जलाल का एहसास मेरे दिल में हो जब मैं आगे खड़ी हूँ नमाज के लिए, सर को झुकाया हो, आवाज पास तू आजाद दबे में हो, निगाहें सद्दे की जगह पे हो, दिल में एहसास हो। जब ये इंसान जमाइयां लेने शुरू होता नमाज, मुंह खोले हुए पूरे और नमाज हो रही है, कपड़े भी सीधे हो रहे हैं, इधर उधर भी देख रहे हैं, तो ये क्या क्या खुशबू है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी नमाजों में हमें खुशबू अता फरमा दे।